भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे स्थान के आदि देव भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त हनुमान की आशीर्वाद का कांक्षी आप सब हरि कथा में प्रेमियों का स्वागत है। सत्संग का उद्देश्य तो है, मानव जन्म का लक्ष्य क्या है। बहुत दुर्लभ मानव जन्म मिलता है, बहुत दुर्लभ। और वो मानव जन्म भी भारत में मिलना बहुत दुर्लभ है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म या, अगर भाग्यशाली हो और आपका जन्म भारत भूमि पे हुआ है तो भाई एक बात याद रखो, जन्म सार्थक करो तो मानव जन्म को सार्थक कर लो। बहुत दुर्लभ मानव जन्म भारत में मिलना है, विश्व में 4 लाख जोनियां मानव की हैं 84 लाख में। उन 4 लाख में पता नहीं कौन से ब्रह्मांड में कितने कहां भ्रमण कर रहे हैं। उनमें से असभ्य तो बहुत हैं, सभ्य बहुत कम हैं, सभ्य लोग भी बहुत कम हैं। उन सभ्य लोगों में जो जो शिक्षा दी जा रही है वो दिए दी जा रही है, अरे भाई मानव जन्म मिला है तो जन्म सार्थक कर। सार्थक करने का मतलब क्या, जिस काम के लिए आए वो काम करो। तो किस काम के लिए हम इन संसार में आए हैं, किस काम के लिए इन संसार में हम आए हैं? कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछा है कि हम यहां काय के लिए आए हैं? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है जिसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि हम यहां आए क्यों हैं। वेदांत सूत्र कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मानव जन्म में अगर आए हो तो जिज्ञासा करो। किसकी जिज्ञासा करो? ब्रह्म जिज्ञासा। जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करो। किसकी? ब्रह्म की, भगवान की। और संसार किसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? जगत की जानकारी के पीछे सारा संसार भटक रहा है। दुनिया को जानने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दुनिया के मालिक को जानने का प्रयास करना यह मानव जन्म का लक्ष्य। मानव जन्म का लक्ष्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मा भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार। जन्म सार्थक कर, पहले जन्म को सार्थक कर, फिर कर पर उपकार, फिर दूसरा काम है। और यह विशेष रूप से भारतवासियों के लिए है, कर पर उपकार। पर मतलब दूसरे पर, उपकार मीन्स भला कर। क्या भला करोगे दूसरे का? दूसरे को भी जन्म सार्थक करण में सहयोग करो। मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्ति में दूसरे का भी सहयोग करो। तो भारतवासी के ऊपर यह बहुत बड़ा दायित्व है। तो इसलिए यह आश्चर्य होता है, कभी लोग कहते हैं कि भगवान के सारे अवतार भारत में क्यों हुए, सारे संत महात्मा विशेष रूप से भारत में ही क्यों प्रकट होते हैं। यह अच्छा प्रश्न है कि सभी भगवान के अवतार भारत में क्यों हुए। तो भगवान को जो बुलाएगा वहां भगवान आएंगे। बहुत सीधा सा प्रश्न है कि कहां भगवान को जो बुलाएगा उसके पास आएंगे। और भगवान के आने का उद्देश्य क्या है संसार के अंदर? भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये दो तीन श्लोक भगवत गीता के समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि मैंने ये गीता का ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम्। ये अव्यय, अव्यय मतलब अविनाशी, जिसका कभी खर्च नहीं होता है, सदा बढ़ता रहता है, कम कभी नहीं होता है, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। इसका मतलब सूर्य देवलोक में दिया। विवस्वान मनवे प्राहु, विवस्वान में मनु को दिया, और मनु के नाम से हमारा नाम मानव पड़ा। और मनु ने किसको दिया? मनुरिक्ष्वाकुवे अब्रवीत। मनु ने इक्ष्वाकु राजा को ये गीता का ज्ञान दिया। इक्ष्वाकु राजा ने यहां अयोध्या की राजधानी स्थापित की, जिसमें फिर रघुकुल चला, ये सूर्यवंश का राजा हुआ इक्ष्वाकु। तो ये इस प्रकार से ये गीता का ज्ञान इस पृथ्वी के ऊपर भगवान ने ऐसे कैसे पहुंचाया? तब भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदो। ऐसी परंपरा के अंतर्गत इस भगवत गीता के ज्ञान को, इस योग शास्त्र को, भगवान से संबंध स्थापित करने वाले शास्त्र को राज ऋषियों ने समझा, और ऐसी परंपरा में ये ज्ञान आया। और फिर कहते हैं सकाले नेह नष्ट, सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप। महान काल के प्रभाव से ये योग नष्ट हो गया। बहुत एक प्रश्न चिन्ह उठता है, अभी तो भगवान आपने कहा कि ये योग अव्यय है, अविनाशी है, और अभी आप कहते हैं नाश हो गया, नष्ट हो गया, ऐसे कैसे हो गया? दो बिल्कुल उल्टी बातें हैं ना। अभी तो आपने कहा ये योग अविनाशी, अभी आप कह रहे हैं योग नष्ट हो गया। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा योग नष्ट होने का अर्थ ये, इस योग को समझने वाले नहीं रहे। योग नष्ट होने का मतलब योग का अध्ययन करने वाले, योग को समझने वाले, इसका आचरण करने वाले नहीं रहे, तो योग नष्ट हो गया।
योग तो अभी है, अविनाशी है, लेकिन उसको कोई समझने वाला नहीं है तो क्या करे?
तो अर्जुन को ऐसे लगा, अरे इसका मतलब हमारे कुल में कोई राजऋषि नहीं क्या? पांडु कुल में कोई राजऋषि नहीं क्या? इस ज्ञान का अधिकारी कोई नहीं? इसका मतलब भगवत गीता ज्ञान कोई हमारे कुल में कोई राजऋषि है ही नहीं? ऐसे अर्जुन के चेहरे के ऊपर ऐसा दिखाने देने लगा कि अर्जुन को तो बड़ा खिन्न भाव उत्पन्न हुआ कि तू कोई राजऋषि नहीं है गीता का ज्ञान समझने वाला। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, स मयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन। स सह का मतलब वही जो मैंने सूर्य को दिया था। मया मेरे द्वारा, ते तुमको अद्य आज, से स मयाते अद्य योग प्राक्त प्रोक्त पुरातन। आज दे रहा हूं ये नया है, लेकिन है पुरातन, असली जो पहले दिया था वही है। अब तो अर्जुन ऐसे भगवान को देखने लगा, अभी थोड़ी देर पहले तो चिंता कर रहा था, अभी के तो मुझे वो योग का ज्ञान दे रहे हैं, इस परंपरा के ऋषि परंपरा में मुझे आप स्थापित कर रहे हैं। आश्चर्य अर्जुन, भगवान कहते हैं हां, क्योंकि भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम है तद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरा भक्त हो और तुम मेरा सखा हो, तुमने मुझसे संबंध जोड़ रखा है, तुम इस रहस्य को समझ सकोगे। अर्जुन प्रसन्न तो हुआ कि मुझे गीता का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का ये प्रश्न न पूछ ले कि अर्जुन ने कृष्ण का मित्र था, जो कृष्ण ने कहा वो मान लिया, इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछता है एकदम। इस श्लोक के बाद अर्जुन का प्रश्न है भगवद गीता में। अर्जुन क्या कहता है, आपका जन्म अभी हुआ, विवस्वान का जन्म पहले हुआ, कथम अहम विज्ञाय त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, मैं कैसे ये मानूं कि आपने विवस्वान को यह ज्ञान दिया? विवस्वान सूर्य द्वारा देवता तो कब पता नहीं कब का कोटि वर्ष पुराना, आप अभी मेरे सामने नौजवान मेरी उम्र के मेरे साथ खड़े हो, आपने उसको ज्ञान दिया, ये कैसे मैं मान लूं? तो अर्जुन का प्रश्न अच्छा है ना, मैं आप कैसे मैं मान लूं कि आपने सूर्य को यह ज्ञान दिया? तब भगवान उत्तर देते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म बीते हैं, तानि अहम वेद सर्वाणि, उन सब का मुझे ज्ञात है, मैं उनको जानता हूं, मुझे याद है। न त्वं वेतत परंतपः, तुम्हें पता नहीं है। ये सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अर्जुन तुम भी पहले थे और मैं भी था, कई बार तुम भी इस संसार में आए हो और मैं भी आया हूं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मुझे सब याद है और तुम्हें याद नहीं है, यही जीव में और भगवान में अंतर है। जीव को भूल जाता है, भगवान त्रिकालदर्शी है, तीनों काल उसको याद रहते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सब ज्ञात होता है, भगवान को कहते हैं अभिज्ञ, सब कुछ जानने वाला। तो जीव और भगवान में ये अंतर है। तो जीव भूल क्यों जाता है कोई कहे तो? भूलने का कारण ये शरीर है, शरीर में परिवर्तन होता है तो उस शरीर की बातें भूल जाती है, बचपन का शरीर चला गया, बचपन की बातें भूल गई, जवानी का शरीर चला जाएगा, जवानी की बातें भूल जाएंगे, बुढ़ापे का शरीर जाएगा तो सब शरीर की समाज बातें समाप्त हो गई। तो शरीर परिवर्तनशील है इसलिए सब कुछ भूलता है, लेकिन भगवान का श्री विग्रह सदा के लिए नव यौवनम च, वेद कहता है यह नव यौवनम च, सदा के लिए नव यौवन रहता है भगवान, उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसका शरीर सदा के लिए सच्चित आनंद है। जैसे हमारी आत्मा सच्चित आनंद है, शरीर सच्चित आनंद नहीं है, आत्मा हमारा सच्चित आनंद है, लेकिन यह शरीर जो हमारा है यह सच्चित आनंद नहीं है, लेकिन भगवान का संपूर्ण शरीर ही सच्चिदानंद है, उसके आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है समझने के लिए कि भगवान को सब कुछ क्यों याद रहता है, क्योंकि वो शरीर और आत्मा उनका अलग नहीं है, सारा ही चिन्मय है, आनंद चिन्मय रस विग्रह। भगवान का विग्रह कैसा है? भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद चिन्मय रस विग्रह, उनका आनंद चिन्मय है। चिन्मय का मतलब सारा ही आध्यात्मिक है। लेकिन अर्जुन बड़ा बुद्धिमान है, एकदम कहता है अरे आपका भी जन्म होता है क्या भगवान? अरे आप परम ब्रह्म है, आपका जन्म होता है क्या? ये प्रश्न चिन्ह अर्जुन के चेहरे पे उठा कि आपका जन्म होता है, आपको जन्म लेना पड़ता है क्या? ये बहुत बड़ा भारी प्रश्न है कि भगवान को जन्म लेना पड़ता है क्या? तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं अजोपी सन अव्यात्मा, अरे मैं अजन्मा हूं, अव्यात्मा, मैं पूरे का पूरा अव्य मतलब अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं होता। जैसे आत्मा का नाश नहीं होता तो मैं अजन्मा हूं। अजोपी सन आव्या भूता नाम ईश्वरोपी सन, और ये सारे प्राणियों का मैं मालिक हूं। भूता नाम, जो भूत प्राणी हैं संसार के अंदर जितने, उनका मैं ईश्वर हूं। अजोपी सन आव्या आत्मा भूता नाम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवानी आत्म मायया, स्वयं प्रकृति। अब कल इस बात के ऊपर चर्चा की थी अपने स्वभाव से, तो भगवान का स्वभाव क्या है कोई पूछे तो? मैं अपने स्वभाव से अपने योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। तो भगवान का स्वभाव क्या है बोलिए? भगवान का स्वभाव है भक्त वत्सलता। भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों के प्रति अति अति अधिक प्रेम और स्नेह, ये भगवान का स्वभाव है। तब अर्जुन पूछता है तो फिर आप क्यों जन्म लेते हैं, यहां आपका कैसा स्वभाव है? तो भगवान साधारण उत्तर देते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्योत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ऐसे जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन का ठीक है, बहुत अच्छा करते, धर्म को स्थापित करने के लिए आपको प्रकट होने की क्या जरूरत है? तो किसी को भेज दे, धर्म को तो स्थापित कर ही लेगा। अर्जुन इसमें संतुष्ट नहीं हुआ इस उत्तर से। तब भगवान इसके बाद वाला श्लोक का परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना तो गौण कारण है, लेकिन विशेष रूप से मैं अपने भक्तों के परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं। साधु जब बुलाते हैं तब आता हूं। तो हम बात ये करने जा रहे थे भारत में भगवान क्यों प्रकट होते हैं, क्योंकि भारत में साधु संत हैं जो भगवान को बुलाते हैं और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो भक्त बनोगे तो भगवान आएगा। एक बार बीरबल छुट्टी लेने गया अकबर के पास, बोला महाराज छुट्टी दीजिए। बोला क्या बात है? बोला राम नामी आएगी, जाओ छुट्टी हो गई आपकी। दो महीने के बाद फिर आया, बोला छुट्टी चाहिए। बोला क्यों? बोला नरसिंह और चतुर्दशी है, भगवान नरसिंह का अवतार का दिन है, जाओ। महीने के बाद फिर आया, बोला छुट्टी चाहिए महाराज। बोला क्यों? बोला आप तो जन्माष्टमी आने वाली है। भगवान ने कहा तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है कि सिर्फ अवतार लेता रहता है? हाँ, उसको कोई काम नहीं क्या? अरे किसी को भेज देता, अपने बेटे को भेज दिया होता, जाके संसार में काम कर लेता, जैसे ईसाइयों के पास हजरत ईसा भगवान का बेटा है, अथवा अपने किसी संदेश वाहक को भेज देता, जाके संदेश दे देता, तो ऐसे धर्म स्थापन नहीं हो सकता क्या? बार बार तुम्हारा भगवान आ जाता। बीरबल उत्तर नहीं दिया, घर चला गया छुट्टी लेकर। घर गया तो अकबर का छोटा सा बालक था ना, उसका फोटो ले गया। एक बहुत अच्छे कलाकार को कहा कि इसका सुंदर मूर्ति बनाओ, मूर्ति ऐसी हो जैसे जीती जागती नजर आए। मूर्ति जब सुंदर तैयार हो गई तो उस मूर्ति को लेकर छुपा के लाया घर में, और जो घर में दासी उस बच्चे को देखभाल करती थी अकबर के बच्चे की, उसको बोला इस बच्चे को ये मूर्ति को कपड़ा पहनाना सुंदर, सबसे अच्छा जो है, और ये जब सोने की मुद्राएं ले लो। जब सभा के अंदर महाराज अपने सिंहासन में बैठेंगे, शहंशाह अकबर, उसके सारे मंत्री चारों ओर बैठे और सेनापति बैठा हुआ हो, तब इस मोम की मूर्ति को आप गोद में लेना और सभा के बीच में आ जाना। तो जब राजा की दृष्टि उस बच्चे के ऊपर पड़े, तब जो सुंदर सा पानी का तालाब छोटा सा बना हुआ है ना, फाउंटेन फुहारा, उधर बच्चे को पानी में गिरा देना, तुम्हारा काम खत्म। एक दिन सभा लगी है, महाराज अपने सिंहासन पे बैठे हैं, नवरत्न बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सेनापति आदि सब बैठे हुए हैं। वो दासी जो है वो अकबर के पुत्र की मूर्ति को बड़े प्रेम से स्नेह से खिलाती हुई लाती है, मुस्कुराती हुई, सुंदर वस्त्र पहने हुए। अकबर ने बच्चे को देखे, मुस्कुराया और इस दासी ने बच्चे को पानी में गिराया। अकबर वहां से सिंहासन से उठा, कपड़ा पीछे रह गया और पगड़ी जहां ध्यान नहीं रहा, पानी में कूद पड़ा और पानी से ऐसे बच्चे को उठाए। बच्चे को उठाए तो मूर्ति। बोला अकबर ये क्या, अब बीरबल ये क्या? बोला महाराज छोटा इतना बच्चा पानी में गिरा था, सेनापति को बोल दिया होता, उस मंत्री को बोल दिया होता, निकाल लेते, आप स्वयं पानी में क्यों कूद पड़े? अकबर कहता मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा मैंने गिरते हुए देखा तो मैं कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं स्वयं पानी। बोला महाराज यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि हमारे भक्त जब भगवान को बुलाते हैं तो उसको न संदेश वाहक नजर आता है न पुत्र नजर आता है, स्वयं ही संसार में कूद पड़ते हैं, चले आते। तो भगवान के आने का ये उद्देश्य है कि उसके भक्त जब बुलाते हैं तब आता। तो भक्त भक्तों से भगवान अति प्रेम करते हैं। कल की कथा अपान ये चल रही थी, इस भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए चाहिए क्या? लोभ चाहिए, लोलुप्य चाहिए। किस चीज का लोभ चाहिए, क्या लोलुप्य चाहिए? कि कैसे हम भगवान को अपनाएं, कैसे हम भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें, कैसे हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें। तो उसके लिए होना चाहिए लोलुप्य। तो लोलुप्य कहाँ से हम में आया? लोलुप्य आया भगवान से। और कल ये कथा चली थी, भगवान को विष्णु को वैकुंठ में थोड़ा सा बल प्रदर्शन का मन में संकल्प हुआ और योग माया के द्वारा जय और विजय को शराप दे के असुर बनाया, और भगवान ने अवतार लेके नरसिंहदेव प्रकट होके हिरण्यकश्यप का वध किया। लेकिन जब प्रहलाद गोद में बैठा तो नरसिंहदेव को वात्सल्य प्रेम का रस आस्वादन करने की इच्छा हुई। इस लोभ के कारण नरसिंहदेव के बाद भगवान हर अवतार में माता और पिता अपने भक्तों को बनाया, उसकी गोद में खेले। राम अवतार में भगवान कौशल्या के गोद में खेले, बहुत सुंदर बाल लीलाएं, भगवान की पूरा बाल कांड बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान राम की लीला में सखा प्रेम के रसास्वादन का भगवान को लालसा हुआ और माधुर्य प्रेम में वैरायटी वेरिजिटेटनेस को भिन्नता का रस आस्वादन करे की लालसा हुई। तो कृष्ण प्रेम में भगवान ने बाल लीलाओं में अपने सखाओं मधुमंगल आदि सखाओं के साथ बहुत प्रेम की क्रीड़ाएं की। क्या प्रेम की क्रीड़ाएं की? एक गांव है, ब्रज में जाएंगे तो बरसाना, बरसाना कहते हैं भाई, बरसाने वाली, बरसाने वाली, मतलब जो अपनी कृपा सबके ऊपर बरसाए उसको कहते हैं बरसाने वाली। कुर्सी कुर्सी भी बिठा दो बाबा को, कुर्सी भी बिठा दो। तो बरसाने की परिक्रमा में जब जाएंगे तो एक जगह आती है उसको कहते हैं चिकसोली। चिकसोली में दूध दही बहुत होता है। किसी ने बरसाने की परिक्रमा की है? आपने की है? बरसाने की परिक्रमा अगर किसी ने की होगी तो एक दान घाटी है, पहाड़ों के बीच में बहुत पतली गली है और वहां कृष्ण ग्वालों के साथ खड़े होते थे और जो वहां मटकी ले जाती थी उसको बोलता दान दो, तो टैक्स दो फिर यहां से जाओ। तो दान घाटी के बाद वो गांव आता है चिकसोली, और चिकसोली गांव में एक बहुत सुंदर कुंड है, गोप कुंड। तो बहुत सुंदर मक्खन है चिकसोली का। ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण किसी गोपी के घर में मक्खन को चुराने को गए, लेकिन अंदर जब मक्खन छीके से उतार रहे थे तो बाहर से कुंडी लगाने का आवाज आया, समझ गए कि गोपियों ने मेरे को देख लिया है। سب کھڑکی سے کودے, بھگوان نے بولا کھڑکی سے کودو, سب سب کھڑکی سے کود کے باہر بھاگ گئے. ایک وہ مدھو بنگل بھگوان کے سکھا, باقی سارے جتنے سکھا ہیں نا سب گوپ سکھا ہیں, ایک براہمن سکھا ہے. یہ براہمن سکھا مدھو منگل ہے, تھوڑا موٹا بھی ہے اور تھوڑا پاؤں سے ٹیڑھا بھی ہے. یہ کود کے اوپر کھڑکی میں گیا, لیکن کھڑکی میں پھنس گیا, کھڑکی میں پھنس گیا. تب تب تو گوپیاں آ گئی. اب گوپیاں جو آ گئی تو بڑا پکڑ لیا, پکڑ لیا اس کو, پکڑ کے نیچے کھینچا. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب کرشن کو بلانے کے لیے ہمارے پاس یہ دھراور ہے, دھروور ہے اس کی. اب تو کیا کرتی ہیں, ایک رسا لیا مدھو منگل کی چوٹی میں باندھا, پھر ایک پیڑ کی ڈالی کے اوپر سے پھینک کے دوسری طرف رسے کو کھینچتی ہیں تو چوٹی کھڑی ہوتی ہے. وہ بولتے کنہیا, بڑی مدھر, پھر چھوڑتی ہیں, پھر وہ نیچے جاتا ہے, پھر کھینچتی ہے کنہیا. بھگوان نے دیکھا یہ مدھو منگل کہاں پھنس گیا. بھگوان نے کہا یہ کیا کر رہے ہو گوپیا, کیا کر رہے ہو, یہ گوپ تھوڑی ہے, یہ براہمن ہے, یہ صاف دے دے گا, تمہارے کو پتی بھی نہیں ملے گا. گوپیا کہ کیا, بولے نہیں نہیں کوئی نہیں ملے گا تمہارے کو, تمہارے کا تو ور بھی نہیں ملے گا, براہمن کا اپرادھ کر رہے ہو, چوٹی کھینچ رہے ہو. بولا کیا کریں, بولا گھر میں جتنے لڈو ہوئے لاؤ اس براہمن کو کھلاؤ. تو بہت کنڈ کے اوپر ایک بہت سندر آستھان بناؤ, اس کو مدھو منگل کا استھان ہے, ادھر بٹھا کے سارا لڈو لایا اور لڈو کھایا, اس کو سب چوٹی کا درد بھول گیا. مہاراج نے بولا ہاں یشسوی بھور, ہاں پتیورتا پتیور, پتیورتا دھرم کا پالن کرو, آشیرواد دینے لگا. تو بھگوان کو بھکت جب ایسے چلاتا ہے کنہیا تو بھگوان ایک دم بھاگ کے وہاں آتے ہیں اس کے رکشا کرنے کے لیے, اس کو چھڑانے کے لیے. تو بھگوان کا بھاو کیا ہے, بھگوان کا بھاو یہی ہے کہ وہ بھکتوں سے اتی پریم کرتے ہیں. تو ایسی بال لیلاؤں کا بہت رساسوادن بھگوان شری کرشن نے برج میں کیا, اور دوسری مادھوریہ لیلا کا بھی رساسوادن بھگوان شری کرشن نے برج میں کیا. اپنے ہی نج دھام سے لائے ہوئے گوپی سکھیوں کو دوسرے کے گھروں میں بٹھا دیا اور ان سے پریم کا آدان پردان کیا. ایک اور گاؤں ہے برنداون میں, کبھی آپ نے برج میں ایک جگہ تو برسانہ آپ نے دیکھا, ایک برسانہ, برسانے میں ورش بھانو رادھا رانی کے پتا کا نام ہے اور ماتا جی کا نام ہے کیرتی, کیرتی کماری شری رادھے, ورش بھانو دلاری شری رادھے. یہ تو رادھا رانی کے پیترک گاؤں ہیں, مہاراج ورش بھانو کا گاؤں ہے. وہاں سے 2 کلومیٹر سامنے روڈ کے دوسری طرف ایک گاؤں میں, اس کا نام ہے یاوت, یاوت جاوٹ بولتے ہیں. اس گاؤں میں رادھا رانی کا سسرال ہے اور ساس کا نام ہے جٹیلا اور نند کا نام ہے کوٹیلا, اور دونوں گاؤں کے بیچ میں 6 مہینے, کچھ 2 مہینے رادھا رانی برسانہ رہتی ہے, 2 مہینے ادھر رہتی ہے, اور بیچ سے ایک راستہ ہے وہاں سے گزر کے آتی ہے. وہ کہنے کا بھاو یہ ہے کہ رادھا رانی کو ایسا استھان پہ بٹھایا, تو یہ تو تھوڑی انترنگ لیلاؤں میں جا رہے ہیں, میرے خیال میں اس میں پرویش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, بہت گہن لیلائیں ہیں. ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام ہرے رام 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 ہرے ہرے. تو بھگوان شری کرشن کبھی آواز کرتے ہیں کوئل جیسا, ایک بن ہے اس کا نام ہے کوکل بن. تو رادھا رانی اور سکھیاں کہتی ہیں اپنی ساس کو کوٹیلا کو کہ دیکھو کوئل کتنا اچھا بولتی ہے, ہم سن کے آئیں کیا. تو جاتی ہیں بھگوان شری کرشن سے ملنے. تو ایسے بھگوان شری کرشن کبھی گھر میں ملنے جاتا ہے رادھا سے, تو ایک بار رادھا سے ملنے گیا بھگوان شری کرشن, تو وہاں اپنی بانسری بھول کے آیا. صبح جو بانسری دیکھی تو جٹلی پٹلی بولتا تو ادھر آیا تھا وہ سانولا والا کالا کنو, آیا کہ نہیں آیا, یہ جو بانسری پڑی ہے. اب بھگوان نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا رادھا رانی کے لیے سمسیا ہو جائے گی. تب پڑوسی ایک استری آتی, بولے میرے گھر 2 بانسری گری پڑی ہے, تیسری بولے میرے گھر 4 بانسری ہے,
अरे रात बांसुरियों की बारिश हुई है, सब घरों में बांसुरियां गिरी हैं, सब जगह बांसुरी पड़ी। लेकिन फिर लोग में तो लोग लज्जा की बात हो गई राजा रानी के लिए। भगवान को सत्य इस बात को प्रतिष्ठित करना था, तब भगवान सो गए घर में, श्री कृष्ण सो गए। बोला क्या है? बोला सर में दर्द है, बुखार, ताजा बुखार आ रहा है। भगवान को कौन सा बुखार आना है? बोला कैसे आपका आपका चिकित्सा कैसे होगी, आपका इलाज कैसे होगा? बोला ऐसी पतिव्रता नारी कोई हो जो हजार सोराख वाला जो जो छन्ना होता है उसमें जमुना जल भर के आए, उससे मुझे स्नान कराए तो मेरा बुखार उतर जाएगा। और ये वो ला सकता है जो पतिव्रता नारी हो। तो यशोदा मैया ने कहा मैं जाके लाती हूं ना बेटा। बोला माता नहीं होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि अरे जटिला, तुमको तो सब पतिव्रता कहते हैं, तुम तो घर से बाहर जाती नहीं हो। वो उठा के वो छन्नी उठा के जमुना में भरे तो पानी सारा बह गया। अब इस पानी गहरे बह गया इसका मतलब पतिव्रता नहीं है, सती नहीं है, तो अपने को कौन बदनाम करने जाए, कोई हाथ नहीं लगाए। तब किसी ने राधा रानी को कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जमुना जल चाहिए और चाहिए भी इस छन्नी में, ये भर के आके नहाएंगे तभी। राधा रानी भगवान को चाहिए, उठाया छन्नी, उठा के छन्नी जमुना में गई तो राधा रानी पानी भरता है तो कुछ गिरा नहीं और पानी लाके माता जी यशोदा को दे दिया। तो सारे ब्रज बच गए, यही तो एक सती है पूरी ब्रज के अंदर, किसी और को कभी तक आज देखा नहीं है। तो भगवान ऐसा प्रेम का रस आस्वादन ब्रज के अंदर अपने ग्वाल बाल और गोपियों के संग में किया है, वो अद्वितीय है, ऐसा संसार में मिलना मुश्किल है। अब भगवान को इस राधा के प्रेम और सत्य में जो लालसा पैदा हुई, उस लालसा की पूर्ति के लिए गोलोक में बैठे हुए भगवान विचार करते हैं। भगवत गीता में तो मैंने सबको ये सुना दिया कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सब धर्म छोड़ के मेरे शरण में आओ। ये तो मैंने बता दिया उनको, लेकिन उनको सिखाया तो नहीं कैसे शरणागत लेनी चाहिए। भाई किसी का शरण आदमी क्यों लेगा? शरण आदमी किसी का तब लेगा जब अति प्रेम होगा। अति प्रेम अपने आप को आदमी दे देता है उसको, जो जिससे प्रेम करता है। प्रेम ही ऐसी चीज है कि आदमी सब कुछ अपना सर्वस्व उसके हवाले करता है। तो इसका मतलब जब तक कृष्ण प्रेम अथवा भगवत प्रेम की प्राप्ति हो तभी शरणागति होगी। तो मैंने शरणागति का तो बोल दिया संसार में कि मेरे भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि मेरा शरण लो, सब धर्मों को छोड़ो। तो अर्जुन ने ऐसे कहा सब धर्मों को छोड़ो तो पाप नहीं लगेगा? कुल धर्म को छोड़ दो, जाति धर्म को छोड़ दो तो पाप लगेगा ना? भगवान ने कहा अहम तुम सर्व पापे भी, मैं तेरे को सब पापों से छुड़ा दूंगा। बोले पापों से छुड़ा देगा फिर यही पड़ा रहूंगा? बोले मोक्ष ईशामी मा सोच, तेरे को संसार से बंधन से मुक्त भी कर दूंगा। मा सुच तो शोक मत कर, विश्वास कर इस बात के ऊपर, संसार में सबके ऊपर हमको विश्वास है, भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास थोड़ा कम है। हरे के ऊपर विश्वास है कि नहीं है संसार में हमको? कभी छोटा उदाहरण देते हैं सिर्फ साधारण व्यक्ति को समझाने के लिए। ट्रेन में चढ़ के रात को सो जाते हो इस विश्वास के साथ कि अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंच जाओगे, मंजिल के ऊपर। कभी ये पूछा है कि ड्राइवर है कि नहीं आगे बैठा हुआ? किसी ने कभी पूछा है जाके? नहीं पूछा है ना। सोया है कि जागा है ये भी नहीं पूछा, विश्वास है ना। विश्वास के ऊपर तो चढ़ के जा रहे हैं, इस आदमी को जानते भी नहीं है हम, उसके साथ जा रहे हैं कि शराब पिया है कि सोया है कि उतर गया ये भी पता नहीं है हमको। विश्वास के ऊपर हम अपनी जान की बाजी लगा के जा रहे हैं, जीवन पूरे का उसके हवाले करके जा रहे हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं तब पायलट उड़ा के कहाँ ले जाएगा हमको मालूम नहीं, लेकिन विश्वास है तब जा रहे हैं। स्त्री को विश्वास है कि पति मुझे खिलाएगा पिलाएगा पालन पोषण करेगा, बच्चे को विश्वास है कि मेरा पिताजी मेरे को साल पालन करेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं आपका पालन पोषण करूंगा, हमको थोड़ा विश्वास कम है। विश्वास और श्रद्धा की कमी ही हमारे संसार में दुख का कारण है।
श्रद्धा और विश्वास दोनों शब्द मिलते जुलते, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। अगर दृढ़ निश्चय हो के भगवान हमारा रक्षा करेगा, हमारे साथ है, तो कभी भगवान कोई दूर कहीं से आने की जरूरत नहीं है भगवान को, भगवान तो आपके अंग संग है, लेकिन इतना विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब गोलोक में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण, मैं कैसे अपनी शरणागति की शिक्षा मेरे प्यारे भक्तों को दूं, और विशेष रूप से कलयुग इतना घोर समय आने वाला है जिसमें वेद का पठन पाठन करना, ध्यान यज्ञ साधन करना संभव नहीं रहेगा। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के मन में ये संकल्प हुआ कि मैं स्वयं भक्त के रूप में जाकर मेरी ही भक्ति करने की शिक्षा जाके दूं, ये भगवान की लालसा पूरी करने का मन में भाव आए। और किस भाव से जाऊं, क्या देने जाऊं, एक श्लोक है बहुत सुंदर, चिराद अद्वितम निज गुप्त वित्तम, चिराद अद्वितम, अद्वितम का अर्थ तो आता है नहीं दिया गया, चिराद मतलब बहुत समय से, बहुत समय से जो चीज नहीं दी गई थी, क्या नहीं दिया गया था, चिराद अद्वितम, क्या नहीं दिया गया था, निज गुप्त वित्तम, निज मतलब अपना स्वयं का, गुप्त बहुत रहे, वित्तम धन, कौन सा धन भगवान, चिराद अद्वितम निज गुप्त वित्तम, कौन सा निज गुप्त वित्त है, स्वप्रेम, स्वप्रेम, कृष्ण प्रेम, अपना प्रेम, किस रूप में प्रेम दोगे भगवान, नामा अमृतम, नाम अमृत के रूप में मेरा प्रेम, स्वयं का प्रेम, नो जो निज वित्त है। इसलिए अपन जो ये मंत्र जपते हैं रोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके लिए कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन साथ मिलकर जो कीर्तन करते हैं ये गोलोक का प्रेम धन है। आप लोगों को सब चीजें इंपोर्टेड अच्छी लगती है ना, हाँ, बाहर से मेड इन अमेरिका बहुत अच्छा है, ये मेड इन यूएसए है, और ये मेड इन इंग्लैंड है, ये मेड इन जर्मनी है, और ये मेड इन गोलोक है, ये इंपोर्टेड है, भगवान के धाम से आया है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक में भगवान के प्रेमी भक्त इस भगवान के नाम को गाया करते हैं, ये है क्या, निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नाम अमृतम, निज गुप्त वित्तम, ये भगवान का अपना निज गुप्त वित्त है, धन है। आपका धन किसके पास रखते हो, धन की तिजोरी की चाबी किसके पास होती है, माता जी के पास होती है, हाँ, तिजोरी की चाबी हम अपने पास नहीं रखते हैं, वो गृहिणी को कहते हैं, उसके हवाले सब काम होता है। तो ये भगवान ने निज गुप्त वित्त देना था अपना, बहुत समय से जो नहीं दिया गया था, अति उदार है, बड़ी उदारता से ऐसे बांटा, पामर सामर कुछ नहीं देखा, जो आया उसको दिया, ये भाव लेकर। तो अब भगवान के मन में कृष्ण क्या आया कि मुझे मेरा अपना प्रेम देना है, कृष्ण प्रेम देना है। भगवान ने देखा कृष्ण प्रेम मेरे पास तो है नहीं, जैसे मेरे कोई गाड़ी पे तो जेब में हाथ डालूंगा, मेरे पास होगा तो दूंगा ना, मेरे पास तो है नहीं। तो कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं है, भगवान के पास भगवत प्रेम नहीं है, भगवान का प्रेम भगवान के भक्तों के पास है। भगवान का प्रेम किसके पास है, भगवान के भक्तों के पास है। कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, तो भगवान के भक्तों से मिलेगी, भगवान के पास नहीं है। अब भगवान ने कहा मैंने संकल्प तो किया है मुझे कृष्ण प्रेम, मेरा अपना प्रेम देना है, स्वप्रेम देना है, लेकिन मेरे पास है नहीं, लाऊं कहां से। भगवान के कौन से भक्त के पास देखूं। अब भगवान देने आते हैं प्रेम तो अधूरा प्रेम तो लाएंगे नहीं, उनको तो चाहिए घनीभूत प्रेम, परिपूर्ण प्रेम, परिकाष्ठा के ऊपर पहुंचा हुआ प्रेम। भगवान ने सब भक्तों की दिल में देखा कितना प्रेम है, 30%, कितना प्रेम है 50%, सबको चकास किया, ये 80% है, ये 90% प्रेम है। एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, उस समय के बंगाल के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद बंगाल का छोड़कर और वृंदावन के अंदर आके कंठी माला पहन के और छोटा सा सफ़ेद कपड़ा पहन के और पेड़ के नीचे रहकर और ये ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है वृद्ध भागवत अमृत। उसमें भक्तों के हृदय में कितना प्रेम है उसका सारा वर्णन है। इस धरती के ऊपर भक्तों के पास कितना प्रेम है। उन भक्तों ने कहा, मानो किसी आपने कहा कि अरे भैया ये देखो ये तो बहुत सुंदर है, इसके पास तो प्रेम भगवान का बहुत ज़्यादा है। इससे पूछा आप तो भगवान के प्रेमी हो, मतलब मेरी बात छोड़ो, वो देखो सबसे बड़ा प्रेमी हो, उसके पास जाओ। तो फिर कहा कि अरे पांडवों जितना प्रेम तो भगवान से किसी ने नहीं किया। अरे भगवान जिसका रथ हाँकता था, पांडवों से पूछा, पांडवों ने कहा हमारी बात छोड़ो, हनुमान से पूछो, हनुमान से कितना भगवान प्रेम करते हैं। हनुमान से जाके पूछा आपसे प्रेम भगवान करते हैं, बोला मेरी बात छोड़ो, वो शंकर के संबंधों को शंकर के पास बैठे होते हैं सब। वो भोलेनाथ को पूछते हैं तुम्हारे सुनाओ भाई आपके से भगवान प्रेम करते हैं, फिर तो मैं तो सारा दिन उसके ध्यान में लगाऊँ, उसकी कथा करता हूँ, लेकिन मेरी बात छोड़ो, आप देखो यदुवंशियों के घर में कैसे है, उनके साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उद्धव से प्रेम करते हैं, पता करो जाकर, कहीं उद्धव को नहीं छोड़ा है साथ में। उद्धव के पास देते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से। उद्धव कहता है हाँ मेरा प्रेम तो बहुत अच्छा है भगवान का, लेकिन मेरी बात छोड़ो, गोपियों के पास देखो कितना भगवान से प्रेम करते हैं। वो कबीर साहब कहते हैं कबीरा कबीरा क्या करे जा जमुना के घाट, एक एक गोपी की मटकी में लटके लाख कबीर। कबीर कबीर क्या करे जा जमुना के तीर, मुझे कहती हो भगवान का प्रेम मेरे पास है, मेरी बात छोड़ो जमुना के तीर पे जाओ, एक एक गोपी की मटकी में लटके लाख कबीर। तो उनका भगवत प्रेम कितना घनीभूत है। तो गोपियों ने कहा हाँ हम तो प्रेम करते हैं, लेकिन रासलीला में हम सबको छोड़ के एक के साथ गया था, उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो भगवान के प्रेम की परिकाष्ठा को देखते हुए भगवान ने देखता भक्तों में सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ है, वो राधा रानी के हृदय में घनीभूत प्रेम की कंडेंस प्रेम, जो कंडेंस मिल्क होता ना जैसे, बहुत कंडेंस प्रेम भगवान का घनीभूत प्रेम राधा रानी के हृदय में। अब कोई अपने दिल से प्रेम थोड़ी देगा भाई, धन है अपना कौन देगा, नहीं देगा ना। और कृष्ण का एक नाम है, क्या नाम है, माखन चोर, छो उसका काम है चोरी करना है। अब आज भगवान ने गोलोक में बैठ के संकल्प किया कि ये प्रेम चोरी करना है और राधा रानी के हृदय से चोरी करना है। लेकिन अंदर जाएगा तब चोरी करेगा ना भाई, किसी के घर से चोरी करनी है सामान तो घर में तो जाना ही पड़ेगा ना। अब भगवान राधा रानी के हृदय में प्रवेश करेंगे तब चोरी करेंगे ना। लेकिन चोरी जब करने गए तो राधा रानी ने पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया तो सांवला कृष्ण तो अंदर रह गया, ऊपर से राधा रानी ने उसको पकड़ लिया तो रंग उसका हो गया गोरा। राधा रानी का कैसा रंग है, गौरा। अंदर सांवला कृष्ण है, बाहर गौरा राधा है। इस रूप में भगवान इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए, तब उनका नाम हुआ गौरंगा। लेकिन सेवा की भक्त जैसी राधा के भाव में कृष्ण 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 करते फिरते थे। क्या काम किया, नमो महावदन्नाय, दान देने को कहते हैं, दानी को कहते हैं महावदन्नाय, सबको दोनों हाथों से दान दे के लुटाए। बोला क्या दान दिया, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण का प्रेम दिया। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण का प्रेम बांट के दिया सबको, कृष्ण प्रेम को बांटा। तो इस भगवान ने भक्त के रूप में जब अवतार लिया, राधा और कृष्ण मिलके एक हो गए। राधा का वर्ण बाहर है, ये राधा के मन में आए कि कृष्ण इस पृथ्वी के ऊपर जाएगा और मेरा भाव लेकर जाएगा और ब्रह्म में धरती के ऊपर लौटेगा और कृष्ण कृष्ण कहेगा। तो गोपियां तो भगवान जब बछड़े चराने जाते थे ना तो कहते अरे इतने कोमल चरण है भगवान के, कहीं कोई कांटा तो नहीं लग जाएगा, कहीं कोई पत्थर तो नहीं लग जाएगा। उनको मालूम नहीं थी ब्रज की पृथ्वी तो एकदम कोमल हो जाती थी भगवान के चरणों को अपने अंक में लेने के लिए। लेकिन उनको ऐसी चिंता होती थी कि ये गोपी गीत में विशेष रूप से गोपियाँ गाती हैं कि आज जब आप वन में जाते हो गायों के संग में तो हम समझते तृण कहीं घास का कहीं कोई पत्थर आपके पाँव में घुस न जाए, हमारी दिल उसकी वजह से बहुत दुखी होती है। तो ये जब भाव कृष्ण के मन में हुआ कि मैं भक्त का भाव लेके पृथ्वी के ऊपर जाऊंगा, तो राधा रानी ने उसके ऊपर आवरण दे दिया कि लेटेगा तो मैं नीचे, मुझे लगेगा इसको नहीं लगना चाहिए,
ये भाव राजा रानी का भगवान श्री कृष्ण के। ऐसा भी एक कथा आपने सुनी है कि कितना भगवान से प्रेम सबसे ज़्यादा कौन करता है, एक कथा सब आपने सुनी होगी, प्रायः हमेशा एक कथा सुनाते हैं। वहाँ भी भगवान ने सर में दर्द का बहाना करके बैठ गए। नारद जी आए दूर से, क्या बात है गोपाल, बस सर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। बोला क्या करना चाहिए, इलाज क्या है? बोला कोई मेरा प्रेमी भक्त अपने चरण की रज दे दे और मेरे माथे पे लगे तो माथे का सर ठीक हो जाएगा। अरे नारद ने बोला ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं अभी लाता हूँ। जाके देखता है एक महाराज घंटी बजा रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, बड़े मंत्र उच्चारण कर रहा है। नारद ने कहा ठहरो बात सुनो, किसकी पूजा करें? बोला भगवान की। बोला वही भगवान उधर बैठा है, कहता सर में दर्द है। बोला क्या करूँ? बोला तेरे चरण की रज दो, मैं निकल यहाँ से, को मेरे को नरक में जाना है, भगवान को मैं चरणों की रज दूंगा। अरे भगवान के चरणों की रज मेरे माथे पे लगेगी, मेरे चरणों की रज भगवान को लगा, निकल यहाँ से। भगा दिया नारद को। या एक जोगी ध्यान में हिमालय में बैठा है, बड़ा ध्यान लगाया हुआ है, जगाया। बोला क्या कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? बोला भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोला भगवान जिसका ध्यान कर रहे हो वो आपको याद कर रहा है। बोलो क्या करो? बोले चरणों की रज दो माथे। बोले चलो यहाँ से, मेरी 80 साल की तपस्या को भंग करने आया तुम्हें, और कोई जगह नहीं मिली? सब तपस्वियों को देखा, सब भक्तों को देखा, उन रानियों से जाके पूछा द्वारका में रुक्मिणी आदि से कि आपके चरणों की जैसे ऐसी बातें करते हो, नारद यहाँ से बाहर जाओ, ऐसी बातें मत करो। यहाँ घूमता हुआ नारद ब्रज में आता है, गोपियां बैठी हुई हैं, नारद को देखते हैं, देव ऋषि आइए आइए। समाचार? बोला समाचार तो बहुत शुभ नहीं है, भगवान के सर में दर्द है कृष्ण गोपाल, क्या करना है? बोला किसी प्रेमी भक्त के चरण की रज चाहिए भगवान के माथे पे लगे। अरे बोला बस ये सब कठी हो गई और लाई खुरपी और खिड़खिड़ करके जितनी बोल कितनी चाहिए और कितनी चाहिए बोलो, सब ने इकट्ठा कर बोले पोटली बांध के ले जा। बोला तुम्हें डर नहीं लगता नरक में जाने का? अरे बोला हम नरक में 100 बार जाएं भगवान के सर का दर्द खत्म होना चाहिए, हम उसको सुखी देखना चाहते हैं, हम अपने सुख के लिए नहीं जी रहे। तो जो अपने सुख के लिए नहीं जीता है, भगवान को आनंद देने के लिए जीता है, ऋषिकेश भगवान का नाम है, जो इंद्रियों को सुख देने वाला है, भगवान के सुख के लिए जो जीता है वो भगवान का प्रेमी भक्त कहलाता है। अपने दुख सुख का उसको जनता नहीं है। नारद ने कहा महाराज मेरे को मिल गया। कहाँ से लाए? बोला वृंदावन से लाए। भगवान मुस्कुराए, बोला नारद तुम भी तो मेरा बड़ा भक्त हो, इतना दूर भटके क्यों, अपना क्यों नहीं दे दिया पहले से? हाँ तुम्हें अपना याद नहीं आया क्या? लेकिन भगवान को ये दिखाना था कि सर्वश्रेष्ठ प्रेम भगवान का कहाँ है, किसके हृदय में है। तो वही प्रेम विशेष रूप से इस कलयुग में राधा भाव में प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण ने चेतना महाप्रभु के रूप में, गौरंग महाप्रभु के रूप में इस भारत में भ्रमण करके, ये श्लोक उनका था, भारत भूमि थे हैला मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अरे भारतवासी आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जैसे कलेक्टर के ऊपर दायित्व बहुत बड़ा होता है ना भाई, एक जो क्लार्क होता है उसके ऊपर कम दायित्व है, कलेक्टर के ऊपर ज़्यादा दायित्व है तो दोनों इंसान, लेकिन एक के ऊपर जज के ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व है, और बाहर लाल कपड़ा पहन के खड़ा हुआ जो बाहर का क्या कहते हैं उसको चौकीदार है उसके ऊपर दायित्व कम है। ऐसे मानव तो विश्व पूरे में बहुत हैं, लेकिन भारत के मानव के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु है, यहाँ से आध्यात्मिकता विश्व को मिलेगी, इसलिए यहाँ ये महाप्रभु कहते हैं, इसलिए भारतवासी पहले तुम जन्म सार्थक करो, पहले भगवान की भक्ति को ग्रहण करो, पहले भगवान के प्रेम भक्ति को अपने हृदय में बिठाओ, और फिर कर पर उपकार, जाके सबको भगवान का प्रेम बांटो, भगवान का प्रेम बांटो सबको। और फिर दूसरा एक बहुत सुंदर श्लोक महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम, बोल दिया पृथ्वी के ऊपर जितने नगर और ग्राम हैं, गांव और शहर है, सर्वत्र होइब मोय नाम प्रचार, सब जगह हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी चेतन महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व की थी कि जहां भी दुनिया में कोने कोने में गांव है शहर है वहां भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन होगा। ये तो भारतवासी तो बड़े चिंता में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, भारत में कहां होता तो हम मान लेते, विश्व के पूरे विश्व में कैसे होगा। लेकिन भगवान की भविष्यवाणी तो झूठी नहीं होती, हमने अभी अपने जीवन काल में इसको देखा कि आज के दिन में, आज के दिन दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके किसी महानगर में भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन नहीं होता हो, सुबह सवेरे 4:30 बजे भगवान श्री राधा कृष्ण की आरती नहीं होता हो, ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है इस वक्त। ایک بھی دنیا کا ایسا دیش ونچت نہیں رہا ہوا ہے اس سے آج کے دن میں. دنیا کے کونے کونے کے اندر, ہر دیش کے اندر, ہر بڑے نگر کے اندر بھگوان کے نام کا کیرتن ہو رہا ہے. یہ بھگوان, اور ابھی بہت دور تک ہم کو یہ سندیش پہنچانا ہے. بھارت کے اندر گت 20 سال سے پد یاترا کے مادھیم سے بیل گاڑیوں میں 6,000 گاؤں تک ہری نام سنکیرتن کا آیوجن چل رہا ہے, اور 20,000 سے ادھک گاؤں ہیں. 20,000 سے ادھک گاؤں ہیں, 6,000 گاؤں 20 سال میں ہوئے ہیں. کبھی بہت سمے لگے گا, لیکن بھگوان نے یہ کہا ہے یہ تو ہوگا. نمت ماتر بھو سوے ساچن, ہم کو صرف نمت ماتر بننا ہے, کرنا تو بھگوان کو ہے, لیکن ہم میں سے کوئی اپنے جنم کو سارتھک کر کے اس بھگوان کے نام کو لینا شروع کر کے اور یہ گاؤں گاؤں تک جا کے پھیلائے گا. بھگوت گیتا کا یہی سندیش ہے. ارجن جو میری اس شکشا کو شردھالوں کو جا کر دے گا, اس سے ادھک پریہ نہ کبھی کوئی ہوا ہے, نہ کبھی کوئی ہوگا, اور نہ کبھی کوئی ہے. تو کون بھگوان کو پریہ نہیں ہونا چاہتا ہے؟ جو بھگوان کو پریہ ہونا چاہتا ہے اس کو بھگوان کے سندیش کو ہردے میں اتارنا چاہیے اور پھر جا کے سب کو سنانا چاہیے. تو یہ ادیش اپنا اس ستسنگ کا ہے کہ آپ اس بھگوت گیتا کے سندیش کو, بھگوان شری کرشن کے سندیش کو, کرشن پریم کے پرساد کو سوئم لو, اور پھر جب سنتشٹ ہو جاؤ, پیٹ بھر جائے, تب بانٹ کے دوسروں کو دو. پہلے خود لو, جب آنند میں مگن ہو جاؤ تب یہ بانٹنا شروع کرو. اپنے ستسنگ کا یہی ادیش ہے. اپن وانی کو یہاں ورام دیتے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں. اب بھگوان کے نام کا تھوڑا کیرتن کریں گے. یہ کیرتن ہی سنسار میں کل یگ میں سار ہے. ذرا اٹھ جائیے اور پریم سے آنند میں مگن ہو کر کیرتن کیجیے. ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے راما رام رام ہرے ہرے. جلدی کرو بھائی, اتنا ٹائم تھوڑی ہے.
ہاں بھیا جی, تو ایک تو مائک اٹھا, سب بھکتوں اکٹھا کر لو بھیا.